إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے کی مجلس میں بدعت سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھیں اور میلاد النبی منانے کے اعتبار سے اس کی کیا تاریخ ہے اور کتنی پرانی تاریخ ہے یہ بھی ہم نے اس کو دیکھا. یہ عجیب بات ہے کہ اس کی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے شروع ہوتی ہے اور آپ کے دور میں اور آپ کے بعد سلف کے دور میں غائب ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی عجیب تاریخ ہے. اگرچہ دیکھا جائے تو یہ بھی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا اس چیز کو نہ کرنا, اس کے نہ کرنے کی کافی دلیل ہے. اس کو عید نہ بنانے کے لیے یہ کافی دلیل ہے. وہاں پر آواز نہیں جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور تابعین کا میلاد النبی نہ منانا ہمارے لیے میلاد النبی نہ منانے کے لیے کافی دلیل ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے اس عید کو ثابت کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہے. اور اس سلسلے میں ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل بدعت کا عام طور سے معاملہ یہ رہا ہے کہ دو میں سے ایک غلطی یا دونوں ان کے ہاں ہوتی ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے اعتبار سے. اہل بدعت دو غلطیاں عام طور سے کرتے ہیں. نمبر ایک, جو دلیل دیتے ہیں وہ دلیل قابل عمل یا ثبوت کے اعتبار سے قابل قبول نہیں ہوتی ہے, یا تو حدیث ضعیف ہوتی ہے یا وہ محض کوئی قصہ واقعہ ہوتا ہے گھڑا ہوا فرضی خیالی جس کی بنیاد پر کسی مسئلے کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یا وہ کسی آدمی کا قول ہوتا ہے جس کو دین سمجھ کر شریعت کا بدل بنایا جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ اہل بدعت کا عام طور سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو دلیل وہ دیتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے, وہ آتھینٹک نہیں ہوتی ہے. دو, دلیل آتھینٹک ہوتی ہے لیکن انڈرسٹینڈنگ آتھینٹک نہیں ہوتی ہے. دلیل معتبر ہوتی ہے لیکن اس سے جو مطلب نکالنے کی کوشش وہ لوگ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. خوش قسمتی سے اہل بدعت کے لیے اس مسئلے میں کافی صحیح دلیلیں ملی ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں سے کسی سے بھی وہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے. اور یہی دلیلیں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. چلیے دیکھتے ہیں کیا دلیلیں ہیں جس سے میلاد النبی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا ثابت ہوتا ہے یا نہیں, ثابت کرنے کی کوشش لوگ کرتے ہیں, وہ کیا دلیل ہے. نمبر ایک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, آپ کا دنیا میں آنا, اس پر خوش ہونا ایمان کی علامت ہے, ایسا لوگ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہمارا شرف ہے اور ایسا نبی ہم کو ملنا یہ ہماری تقدیر ہے اور ہمارے لیے بہت ہی شکر کی چیز ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نبی بنے، آپ نے دعوت دی، تو یہ سارے ایام سارے عالم کے لیے خیر ہی خیر تھے. اس پر جتنا آدمی خوش ہو کم ہی ہے، جتنا شکر کرے کم ہے. لیکن ایک بات ہے خوش ہونا اور دوسرا ہے خوشی منانا، دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی جو واقعی انسان کے لیے خوشی کی ہو، آدمی اس پر خوش ہو، چاہے وہ دنیاوی ہے یا دینی ہے. ایک ہے کہ اس چیز کو بطور رسم خوشی کے طور پر جشن بنا کر منانا، یہ ایک الگ چیز ہے. اس کے لیے دلیل کیا دی جاتی ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے نبی آپ کہیے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اللہ کے اس فضل اللہ کی اس رحمت پر ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جس کو دوسرے لوگ جمع کر رہے ہیں. اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ مفسرین، چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں اس لیے ہر آیت پر تفصیلی گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے، مفسرین نے اس کے سلسلے میں اسلام کو ذکر کیا ہے، قرآن کو ذکر کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا ہے. اگر اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیے جائیں، ہم کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے نہ صرف رحمت ہیں بلکہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم مانتے ہیں اس کو. لیکن اس پر خوش ہونا یہ فطری چیز ہے، ایمان جس کے دل میں ہے وہ یقینی طور پر خوش ہوگا. لیکن کسی ایک تاریخ کو فکس کر کے اس پر خوشی منانا، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ فلاں تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو ہر سال اس کو بطور جشن منایا جائے، خوشیاں منائی جائیں. اگر واقعی یہ دین ہے تو ظاہر بات ہے یہ آیت آج تو نازل نہیں ہوئی، جس دور میں یہ نازل ہوئی، جن لوگوں کے سامنے یہ نازل ہوئی، کیا وہ یہ نہیں مانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوش ہونا چاہیے، آپ کی پیدائش پر، آپ کے وجود کو پانے پر خوش ہونا چاہیے، آپ کی نبوت پر خوش ہونا چاہیے؟ تو وہ کیسے خوش ہوتے تھے اور اس سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوش ہوتے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن، اس تاریخ کو ہر سال آپ مناتے تھے؟ اس کا ثبوت ہم کو نہیں ملتا ہے، کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا. اگر ہوتا تو بعض لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے منایا، یہ کیسا بہت بھولا سوال ہے ایک دم، لیکن کام بڑا کرنے کی کوشش ہے اس کے پیچھے. ہو سکتا ہے انہوں نے منایا، ہم کو نہیں معلوم ہوا. ہم کہتے ہیں صحیح ہے، ہو سکتا ہے منع کیا. تو جیسے پاسبلٹی منانے کی ہے ویسے منع کرنے کی بھی تو ہے، کیونکہ آپ ان سے کہیں گے ہو سکتا نہیں، ایسا تھوڑی ہے. بولیں گے آپ کے پاس منع کی دلیل ہے کیا، بتاؤ کدھر منع کیا. تو ہم کہتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہو سکتا منایا ہو، ہم کہتے ہو سکتا ہے منع کیا. تو جیسے آپ کا نقل نہیں ہوا، ہمارا بھی نقل نہیں ہوا. اگر آپ بولتے ہو کہ نہیں نہیں ایسا منع کیے ہوتے تو حدیث میں ہوتا، ہم کہتے ہیں منائے ہوتے تو حدیث میں ہوتا. اور کیا صحابہ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جائے گا کہ اتنی بڑی چیز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو منایا اور صحابہ نے اس کو چھپا دیا؟ کیا دشمن تھے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا وہ خوش نہیں ہوتے تھے؟ کیا وہ اس چیز کو امت تک نقل نہیں کرتے تھے؟ نہیں، جب منائے نہیں تو ذکر بھی نہیں آیا اس کا. ایک صاحب بولنے لگے ہماری ساری دلیلیں جب وہ عراق میں اور جو بھی یعنی بغداد میں فتنے آئے تاتاریوں کے، ہماری ساری دلیلیں جو ہیں وہ لوگوں نے اٹھا کے وہ سب سمندر میں، وہ دریا میں ڈال دیے. تو ہماری سب دلیلیں تھیں، سارے مسائل ہمارے ثابت ہیں، دلیلیں تھیں، لیکن وہ سب بہ گئی. تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا ہاں ان کا رد بھی تھا، ہمارا وہ بھی بہ گیا. तुम्हारी दलीलों का जो रद्द था वो भी बह गया हमारा, उसके खिलाफ की दलील। तो कोई आदमी कुछ भी गुमान की बुनियाद पर साबित करना ये सबसे कमजोर तरीका है। हो सकता है ऐसे कुछ भी हो सकता है। कोई आदमी आके आपसे कहे हो सकता है आपके पास जो कुछ है वो सब मेरा है, तो देंगे आप उसको? नहीं देंगे। कोई आके उठा के ले गया आपको, हो सकता है वो आदमी उधर मर गया आपने मारा उसको, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है। तो हो सकता है ऐसे कुछ साबित नहीं हो सकता है। हो सकता है ऐसे कुछ भी साबित नहीं हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, आपकी जिंदगी, आपकी हर बात ऐसी है कि वाकई ईमान आदमी के दिल में है तो उसको खुशी होती कि अल्लाह ने इतना अच्छा नबी हमको दिया, जिसने हमको इतनी अच्छी रहबरी दी। हर बात से आदमी खुश होता है। और इसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, वरना नज़र अल्लाह मरअन समिअ मिन हदीथन के ज़िमन में उलमा ने इस बात को बयान किया है कि जो आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सुनता, बोलता, पढ़ता, लिखता रहता है और जो तबलीग करता है आपकी हदीसों की, अल्लाह ताला उसको ऐसी ही चीज अता फरमाता है, खुशी अल्लाह देता है उसको, नज़र अल्लाह मरअन। तो इससे ये साबित नहीं होता है। मजीद ये कि कुछ लोगों ने और भी दलीलें उसकी दी खुशी के एतबार से, उससे पहले मैं आऊंगा। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था क्या था खुशी में। अगर मान लीजिए चलिए खुशी हमको मनाना है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते तो आप क्या करते? अबू बकर रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा अताहु अम्रुन यसुरहु औ बुशिरा बिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई खुशी की बात पहुंचती या कोई खुशखबरी आपके पास आती, खर साजिदन शुक्र लिल्लाह तबारक व तआला, तो आप अल्लाह के शुक्र के तौर पर फौरन सजदे में गिर जाते हैं, फौरन सजदे में चले जाते हैं। इसको सजदा शुक्र कहते हैं, सजदा शुक्र कहते हैं। ये अबू दाऊद और इब्ने माजा की रिवायत है और ये रिवायत हसन दर्जे की है। जहां तक कि मेरा इल्म है हनफी मजहब में सजदा शुक्र नहीं है। वो कहते हैं यहां सजदे से मुराद सजदा नहीं है बल्कि क्या है, नमाज है। इसीलिए दूल्हे बुलाते पकड़ के और नमाज पढ़ाते उसको शादी के दिन, कभी तो मिलता नहीं है, आज मिला तो पूरे उसको झूमर में क्या बोलते हैं उसको, सहरा झूमर ही है वो, उसके अंदर लाते उसको पकड़ के, कहां मस्जिद भी नहीं मिलती उसको, दरवाजा भी नहीं दिखता कहां है, गिरते पड़ते आता बेचारा अल्लाह अकबर बोल के, जल्दी जल्दी कौन से सूरे बाज वाला उसको पढ़ाता है जिसको आता जोर से जहरी, वो भी कभी पढ़ा तो नहीं नमाज इसने। अब चलो शादी हो रही, नमाज इसी बहाने हो जाएगी अपनी, एक शादी की एक जनाजे की, जो शादी की पढ़ता तो सीधा जनाजे की उसकी पढ़ते दूसरे। तो खुशी का तरीका क्या है, फौरन सजदे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर जाते थे, ये तरीका था आपका। क्या सजदा शुक्र करते हैं? इस दिन कौन नमाज पढ़ता है, नमाजों का तो हाल सबको मालूम है। आयशा रदी अल्लाह तआला फरमाती है काना इदा अताहुल अम्रु यसुरहु, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई खुशी की बात पहुंचती, काला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है, उस जात के लिए है जिसकी नेमत से, जिसकी तौफीक से, जिसकी नेमत की वजह से, उसी की नेमत से क्या होता है, ततिम्मुस सालिहात, अच्छे काम पूरे होते हैं। कि अल्लाह की तौफीक ना हो तो कोई काम पूरा ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते ऐसा बोलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारे नहीं लगाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जश्न नहीं मनाते, लाठी नहीं घुमाते। खुशी जो है, खुशी का तरीका क्या है, यह हमारा नबूवी तरीका है खुशी का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे, गाना बजाना वहां नहीं होता था खुशी में। इस हदीस को इब्न सुन्नी ने अमरुल यौम लैला में और इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में रिवायत किया और सही रिवायत है। बाद लोगों ने एक और दलील पेश की है जो बुखारी की है। उरवा फरमाते हैं, ये ताबई है, वसुवैबतु मौलातु लि अबी लहब, सुवैबा अबू लहब की बांदी थी, काना अबू लहब अअतकहा, अबू लहब ने इस बांदी को आजाद किया था, फअर्दअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस बांदी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था। रदअत जिसको कहते हैं, अर्दअत बचपन में दूध पिलाना। फलम्मा मात अबू लहब, जब अबू लहब की मौत हो गई, اُرِيَهُ بَعْدُ اَهْلِهِ بِشَرِّ حِبَتِ، ابو لہب کے قریبی کو، کسی قریبی رشتہ دار کو خواب میں ابو لہب بری حالت میں دکھائی دیا. قَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيتَ، پوچھا کیا ہوا تجھ کو، کیا حال ہوا؟ قال ابو لہب لم الق بعدكم غير اني سقيت في هذه بعتاقتي طويبه، ابو لہب نے کہا تم سے جدا ہونے کے بعد یعنی میری موت کے بعد مجھ کو تھوڑی بھی راحت نہیں ملی سوائے اس کے کہ مجھ کو طویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے پانی پلایا گیا، سقیت. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت جس کو فتح الباری میں ابن حجر نے ذکر کیا ہے، سہیلی کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا لما مات ابو لہب، جب ابو لہب کی موت ہو گئی، رأیته فی منامی بعد حول فی شر حال، ایک سال بعد اس کی موت کے میں نے ابو لہب کو برے حال میں دیکھا. فقال ما لقیت بعدکم راحتا، کہ تمہارے بعد مجھ کو راحت نہیں ملی، الا ان العذاب يخفف عني كل يوم اثنين، الا یہ کہ ہر پیر کے دن مجھ سے عذاب ہلکا کیا جاتا ہے. قال وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم اثنين، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے. وکان ثویبہ، اور ثویبہ بشرت ابا لہب بمولدہ، کہ ثویبہ نے ابو لہب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دی تھی. فاعتقها، تو ابو لہب نے اس باندی کو آزاد کر دیا تھا. فتح الباری میں سہیلی کے حوالے سے ابن حجر نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. اس روایت سے کیسے دلیل لی گئی؟ لوگوں نے کہا کہ دیکھیے، ایک ابو لہب جیسا کافر ہے جو نبی کا دشمن تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ایک باندی آزاد کر دی. بس اتنا عمل تھا، اس کی بنیاد پر جہنم میں بھی اس کو پینے کے لیے پانی ملتا ہے. تو آپ بتاؤ کہ اگر ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائے تو اس کو کیا کیا ملے گا؟ یہ دلیل ہے. جس نے ذکر کیا ہے دلیل کو پہلے وہی کیا بولتے دیکھتے ہیں. ابن حجر کہتے ہیں، دیکھیے بخاری کی روایت دو حصے اس کے ہیں، ایک مرفوع روایت ہے، اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے. آپ بخاری میں دیکھیں گے حدیث نمبر اس میں آپ کو دیا گیا ہے، حدیث نمبر کتنا ہے؟ 5101 کتاب النکاح میں. تو کتاب النکاح میں نکاح سے متعلق ایک حدیث ہے، اس کے بعد عروہ نے ڈائریکٹلی یہ ٹکڑا بیان کیا ہے. تو دو ٹکڑے ہوئے، ایک مستقل سند کے ساتھ روایت ہے اور ایک عروہ کی روایت ہے جو براہ راست ابو لہب کا اور رشتہ دار کا خواب کا معاملہ، یعنی عباس رضی اللہ عنہ کا خواب کا معاملہ بیان کر رہے ہیں. تو عروہ تابعی ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس سے روایت کر رہے ہیں. تو یہاں پر ابن حجر اس کے بارے میں کہتے ہیں وَأُجِيب أَوَّلًا بِأَنَّ الْخَبَرَ مُرْسَل، پہلی بات یہ ہے، یا تو اس کا جواب دیا گیا یا میں جواب دے رہا ہوں. اجیب، پہلی بات تو یہ کہ یہ خبر مرسل ہے، یعنی تابعی براہ راست کوئی بات بیان کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل. عروہ اس کو بیان کر رہے ہیں. ارسلہ عروہ ولم یذکر من حدثہ بہ، عروہ نے اس کو ذکر کیا ہے لیکن عروہ نے بتایا نہیں کہ انہوں نے کس سے یہ روایت سنی. تو ایسی روایت معتبر نہیں ہوتی ہے، ایسا ٹکڑا حدیث کا معتبر نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات ایک ہی حدیث میں امام بخاری خود معلقاً روایت بیان کرتے ہیں، کبھی جزم کے ساتھ، کبھی بغیر جزم کے ساتھ. علماء نے کہا امام البخاری جزم کے ساتھ کہیں تو معتبر ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ جو روایت ہے یہ عروہ نے بیان کی، لیکن عروہ اپنے اوپر راوی کو بیان نہیں کر رہے. تو کچھ علماء نے اس وجہ سے اس ٹکڑے کو قبول نہیں کیا، اس کے اوپر کی روایت لی ہے لیکن یہ ٹکڑا نہیں لیا ہے. کہتے ہیں ارسلہ عروہ ولم یذکر من حدثہ بہ وعلی تقدیر ان یکون موصولا، ابن حجر کہتے ہیں ٹھیک ہے مان لو कि ये रिवायत क्या है, जुड़ी हुई है, मुत्तसिल है, मौसूल है, सनद मुत्तसिल मान भी लें, इसको मुरसल नहीं मानते हुए मौसूल माने इसको। कहते हैं फल्लदी फिल खबरी और रुया मनाम फला हुज्जत फी, कहते ये जो खबर है इसमें ख्वाब का मामला है और ख्वाब शरी दलील नहीं होता है। आपने देखा ख्वाब में आप जन्नत में हैं, आप चले गए जन्नत में, सुबह बीवी उठा रही उठो काम पे जाना है, अरे जन्नत में से वापस बाहर। तो एक आदमी जो ख्वाब में देखता है क्या हतमी तौर पर यह माना जाएगा कि ऐसा ही है? नहीं। एक आदमी ख्वाब में कोई चीज देखता है तो ख्वाब के बारे में कायदा यह है कि ख्वाब शरई हुज्जत नहीं है। आप पूछेंगे इमाम बुखारी ने क्यों जिक्र किया, इमाम अल बुखारी ने और भी ख्वाब बयान किए हैं, सहाबा ने ख्वाब देखे, फुला ने ख्वाब देखा, तो ख्वाब अपनी जगह उसकी तावील होती है, उसका एक्सप्लेनेशन होता है, उसकी ताबीर होती है। लेकिन उस ताबीर, आप देखिए मिसाल के तौर पर, यानी कुरान में भी ख्वाब है, उसमें गायें देखी बादशाह ने, मोटी गायें दुबली गायें, तो गाय थी वो, गाय नहीं थी वो, गाय का मतलब गाय नहीं था, गाय का मतलब साल था, तो उसके कुछ माना होते हैं। तो यहां पर कहते हैं कि इससे ये दलील नहीं ली जा सकती है कि जो देखा है बेआईनी ही वो हुआ है, क्योंकि वो ख्वाब है। दूसरी बात यह कि सुहेली की रिवायत में है कि अबू लहब के मरने के एक साल बाद ये ख्वाब देखा। बाद उलमा ने यह भी कहा है कि उस वक्त खुद अब्बास रदी अल्लाह तआला मुसलमान नहीं थे, तो उस ख्वाब में भी दलील ली जाएगी नहीं, इसलिए कि उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे। तो ये भी बात बाद उलमा ने कही है। बहरहाल हम कहते हैं मान लिया कि रिवायत मुत्तसिल है और ये ख्वाब देखा, तब भी ख्वाब में दलील हो सकती है? नहीं। मान लिया चलो ये भी है, ऐसा है भी आएंगे, क्या अबू लहब हर साल 12 रबीउल अव्वल को या 9 रबीउल अव्वल को एक बांगे आजाद करता था? यानी आप बताइए, इससे बांगे आजाद करने से आप कीजिए, यानी इससे ईद मिलादुल नबी मनाना कहां साबित होता है? ज्यादा से ज्यादा इससे साबित होता है कि अगर एक काफिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुछ कर दे, हो सकता है अल्लाह उसके अजाब में कमी करे। हालांकि इस पर भी उलमा ने इतराज किया है, उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। इब्ने हजर ने अक्वाल जिक्र किए, वो तफसीर वो खुद दर्स है, वो खुद एक दर्स हो जाएगा कि क्या क्या बातें उलमा ने उसके जिम्मे में कही, कौन सी आयतें पेश की, कौन सी अहादीस पेश की है। तो बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मान लें कि बेआईनी है, ऐसा है, तब भी सवाल ही पैदा होता है इससे ईद मिलादुन नबी की तरफ से आती है, यानी अबू लहब का किसी बांदी को आजाद करने से खुशखबरी पाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके अजाब में तकफीफ होना, उसमें ईद मिलादुन नबी मनाने का कहां से सबूत आ रहा है? सवाल ही पैदा होता है, इससे सबूत मिलता है? नहीं। क्योंकि आप एक बार उसने पैदाइश के वक्त आजाद कर दिया, अगले साल वापस वो डेट आई तो क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया। तो आप क्यों कर रहे हैं? आप तब रहते तो करना था, जब खुशखबरी मिली उसी वक्त कर दिया तो वो ठीक है, वो दलील बन गई। लेकिन हर साल का रिपीटिशन और वो भी जुलूस निकालना, बांदी तो आजाद नहीं कर रहे, तो इससे कोई जोड़ ही नहीं है, इसमें कोई जोड़ नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे आदमी कहे अजान सुन के कहे इफ्तार करना शुरू कर दे, एक आदमी जोहर की अजान सुने और रोजा इफ्तार करे या इफ्तार की दुआ पढ़ने लगे, तो ये जोड़ कहां है? बोले मगरिब में रहता ना, वैसे यहां भी कर सकते हैं, तो उसका इसका जोड़ क्या है? वो अलग है, ये अलग है। तो जबरदस्ती हम कहीं भी कुछ भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। दूसरी दलील, कुछ लोगों ने कहा है कि कुरान में देखिए ईसा अलैहि सलाम और दूसरे नबियों की पैदाइश का जिक्र आया है, तो इस्लाम में पैदाइश का बहुत इंपॉर्टेंस है, खास करके नबियों की, तो बहुत अच्छी बात है, पैदाइश का इंपॉर्टेंस है या जो भी इंपॉर्टेंस है, तो आगे क्या? तो देखो कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, ईसा अलैहि सलाम का जिक्र किया, والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا, कि ईसा अलैहि सलाम ने कहा सलाम है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, ويوم اموت जिस दिन मुझको मौत आएगी, ويوم ابعث حيا और जिस दिन मैं दोबारा जिंदा किया जाऊंगा, जिंदा करके दोबारा मुझको जिसको हम कहते हैं वापस से कयामत के दिन जिंदा होना। तो तीनों हाल پیدائش کا دن، موت اور واپس سے زندہ ہونا، تینوں میں کیا ہے؟ سلام. بعض لوگوں نے کہا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن بھی ان پہ سلام پڑھنے کا ذکر یہاں آ رہا، تو اس دن ہم یا نبی سلام علیکم بولتے تو کیا غلط ہے؟ قرآن میں آ رہا، ابھی تم کو قرآن سے زیادہ کیا چاہیے؟ آدمی ہاں نا برابر، اس پہ تو آ رہا، اس میں تو آ رہا ہے. لیکن یہ اگر واقعی یہ بات تھی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا تھا کہ اس دن سلام پڑھنا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام پہ ان کی پیدائش کے دن، تو کرسمس کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بولے کہ سلام پڑھتے ہیں ان کے اوپر، کیا ایسا پڑھے؟ نہیں، ٹھیک ہے ان پہ نہیں پڑھنا چاہیے بابا، اپنے اوپر ہونا چاہیے کچھ تو بھی. تو صحابہ آپ کی پیدائش کے دن سلام پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا ہم کو ثبوت نہیں ملتا ہے. تو یہ سلام کیا ہے؟ سلام کیا ہے؟ امام البغوی کہتے ہیں والسلام علی یوم ولدت، سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، یعنی سلامتی ہو مجھ پر، میرے اوپر سلامتی تھی. کیسے؟ کہ ہر پیدا ہونے والے کو پیدا ہونے کے وقت میں شیطان کو چبھ ہوتا ہے، مجھ کو نہیں چبھ ہوئے گا. اور بخاری کی روایت میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والے کو شیطان کو چبھوتا ہے تو وہ روتا ہے، لیکن اس میں صرف ایک شخصیت ہے جس کو ایسا نہیں ہوا، اور کون ہے وہ؟ عیسیٰ علیہ السلام. یہ بخاری میں ہے. تو معلوم ہے سلامتی کس چیز سے ہے؟ شیطان کے چبھونے سے. اور یہی بات کون کہہ رہا ہے؟ امام البغوی کہتے ہیں والسلام علی یوم ولدت ای السلامۃ عند الولادۃ من طعن الشیطان، پیدائش کے وقت شیطان کے چبھونے سے میں سلامت رہا. یہ سلامتی، یہ نہیں کہ سب سلام پڑھ رہے تھے اس دن. نمبر دو ویوم اموت، جس دن میں مجھے موت آئے گی، یعنی قیامت کے قریب. ابھی تو موت آئی ہے نہیں، ابھی تو اٹھائے لیا اللہ نے زندہ ہو کر. بعض اوقات عیسائیوں کو سنتے سنتے مسلمان بھی بھول جاتا ہے. ویوم اموت، اور جس دن مجھ کو موت آئے گی، ای عند الموت من الشرک، کیا مطلب ہے؟ کہ موت کے وقت میں شرک سے محفوظ رہوں گا، شرک سے محفوظ رہوں گا. سارے نبی ڈرتے تھے شرک سے. ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، من الاحوال، ساری گھبراہٹ کے معاملات سے میں کیا رہوں گا؟ سلامت رہوں گا، قیامت کی تکلیف نہیں ہوگی. تو یہ تین باتیں ہیں جو سلامتی کی ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی پیدائش کا ذکر کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا ہے کہ ہم عید منائیں. نبیوں کی پیدائش کا ذکر قرآن میں آنا یا حدیث میں کسی کی پیدائش کا ذکر آنا، اسی یہ دلیل نہیں نکلتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو بطور عید منائیں، اس کی کوئی دلیل اس میں نہیں ملتی ہے. تیسری دلیل ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، نفل روزے پیر کے دن آپ رکھتے تھے. فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، آپ نے کہا اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اب یہاں پر صحابی نے پوچھا کہ پیر کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں تو کیا فضیلت ہے پیر کے دن کی، کوئی فضیلت ہے پیر کی؟ تو آپ نے ان کو بتانے کے لیے کہ پیر کا دن کیا ہے، اس کا امپورٹنس کیا ہے، آپ نے کہا فیہ ولدت، پیر ہی کے دن میں پیدا ہوا، اور وہ فیہ انزل علی، اور قرآن مجھ پر نازل ہوا کون سے دن؟ پیر کے دن، وہ پیر ہی تھا جب قرآن نازل ہوا. اس سے بعض لوگوں نے کہا دیکھو یہ تو ملا نا، ابھی ہمارے نبی کی پیدائش کا دن ملا، اس کو منانے کا ذکر ملا، اس کی فضیلت مل رہی ہے ہم کو. ہم کہیں ٹھیک ہے، اس میں ڈیٹ مل رہی ہے کہ دن مل رہا؟ ہمارے نبی تو ہر ہفتے منا رہے اور تم لوگ سال میں ایک بار، یہ ہفتے میں پیر منا رہے ہیں وہ بھی روزہ رکھ کے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کھا پی کے سال میں ایک بار، تو روزہ رکھو. نہیں نہیں روزے والا عمل اپنے کو نہیں، وہ سال میں ایک بار سزا وہ کافی ہے، رمضان میں روزے کافی ہیں، باقی یہاں کیا ہے؟ اب بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اپنی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں، आप दिन बोल रहे हैं कि डेट बोल रहे हैं? दिन है, पीर के दिन में पैदा हुआ। और सिर्फ एक वजह आपने बताई नहीं, दूसरी वजह क्या है? कुरान मुझ पर नाजिल हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन कहा, और इससे दलील लेने वाली दलील क्या ले रहे हैं? देखो, इससे दलील मिलती नबी की पैदाइश के दिन को मनाने की, तो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालना चाहिए। अगर यही मतलब इसमें है तो आप बताइए, हमसे ज्यादा इस दलील को कौन समझता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला नहीं समझ रहा है? तो क्या आपने इस तरह से अमल किया? क्या आपने अपनी पैदाइश का डेट मनाई, उसकी सालाना? या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोजा रखा करते थे? आप भी रखिए पीर के दिन रोजा, ये अपने से नहीं होता। हर पीर को रोजा रखो, इतने जल्दी मनाओ ईद, एक बार बोले साल में 52 मनाओ ना, लेकिन कैसा मनाओ? रोजा रख के मनाओ। तो ये 30 नहीं होते, डबल 52 कब होना? इसको लोग तैयार है मनाने के लिए? नहीं। आदमी क्या करता है, दलील एक लेता है, उससे अपनी मनमानी निकालता है, जो निकल रहा है वो लो उसमें से। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे पीर के लिए, और वजह आपने दो बताई, और तीसरी एक वजह आपने बताई, इस दिन की खसूसियत क्या है, पीर की खसूसियत क्या है? आपने फरमाया तुअरदुल अमालु यौमल इस्नैन वल खमीस, ये असल वजह है। आपने फरमाया आमाल अल्लाह के यहां पीर और जुमेरात के दिन पेश किए जाते हैं, लोगों के अमल पीर और जुमेरात को पेश किए जाते हैं। फअहिब्बु अन युअरद अमली व अना सائم, तो मैं इस बात को पसंद करता हूं कि मेरा अमल अल्लाह के यहां जब पेश हो तो मैं रोजे की हालत में रहूं। ये वजह है उसकी। इसको इमाम नसई ने रिवायत किया, और सही रिवायत है। तो आप देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हफ्ते के हिसाब से दिन कहें और दलील उससे कोई आदमी निकाले साल के हिसाब से एक तारीख, तो जमीन आसमान का फर्क है। इसमें कहां से दलील मिल रही है इसके लिए? इसमें कहां से दलील मिल रही है? तो ये तीसरी दलील है जिससे साबित होता नहीं है कि ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए। और आप बताइए, क्या सहाबा पीर के दिन हर पीर को ईद मिलादुन नबी मनाते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते थे? नहीं। 12 का तो छोड़ ही दी, 12 रबीउल अव्वल को तो छोड़ ही दी, उसमें तो है ही नहीं कुछ। इसमें मिल रहा है वो भी रोजा है, और क्या आपने सारे मदीने वालों को कहा चलो मेरी ईद मनाएंगे, जुलूस निकालेंगे? नहीं, इसका कोई सबूत नहीं। आप इनफरादी तौर पर ये रोजा रखते थे, और आप चाहते थे कि इस दिन अमल पेश होता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं रोजे से रहूं। नंबर 4, अल्लाह, चौथी दलील ईद मिलादुन नबी मनाने की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीका खुद किया था नबी बनने के बाद। आप सोचेंगे ये कौन सी, ये कैसा जोड़ता है इससे? जोड़ने वाला जोड़ने पे आए तो कैसा भी रिश्ता जोड़ता है, जोड़ना ही रिश्ता, तो फिर उसने जोड़ना ही जोड़ना है। अनस रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं अक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नफसिही बादमा बुइथ बिन्नबुवा। अब्दुर्रज़ाक ने अपनी मुसन्नफ में इसको रिवायत किया है, इस सनद पर बाद उलमा ने कलाम किया है, लेकिन एक हसन सनद से इमाम अत्तहावी ने अपनी मुश्किल शर्ह मुश्किल आतार में इसको जिक्र किया है, वो सनद हसन है। अनस रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी बनने के बाद, नबुवत मिलने के बाद अपना अकीका खुद किया था। तो इससे साबित हो रहा है कि ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए। आप सोचेंगे जबरदस्ती क्यों आप सता रहे हैं हमको? मैं वो दलीलें जिक्र किया हूं जो दूसरों ने की है। कहा कि देखो, इससे साबित होता है कि आपने अकीका कब होता है बच्चा, तो बच्चे की पैदाइश से क्या जुड़ा हुआ है? अकीका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीका नबी बनने के बाद किया, तो गोया कि आपने अपनी पैदाइश मनाई। अकीका कौन से दिन होता है? पैदाइश के दिन होता है, पैदाइश के 7वें दिन होता है, और वो भी दिन भी बदल जाता है उसमें। यानी बच्चा अगर इतवार को पैदा हुआ तो अकीका कब किया जाएगा? अगला हफ्ता एक दिन पहले आ जाओ, 7वां दिन, यानी पीर को होगा? नहीं, इतवार को पैदा हो तो वह एक दिन पीछे आने का अगले हफ्ते में, शनिचर को। समझ में आ रहा है? तो अगर पीर को हो तो अकीका कब आएगा फिर? सब डर रहे क्या बोले, पकड़ते के क्या होंगे? अगर पीर को पैदा हुआ है तो अकीका आएगा एक हफ्ता बाद, लेकिन दिन पहले, यानी इतवार को आएगा, इतवार को आएगा ना। تو اب اس سے لوگوں نے دلیل لی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ منایا تو ہم کو عید منا. عقیقے سے عید نکلتی, پیدائش کا دن نکلتا ہے عقیقے سے, کچھ بھی جوڑ ہی نہیں ہے اس کا کچھ. تاکہ نہیں, اس سے آپ نے اپنی پیدائش کی خوشی منائی, اس سے ثبوت ملتا ہے. اگر واقعی اس سے ثبوت ملتا ہے تو کتنی بار آپ نے عقیقہ, چلیے ہم پوچھتے ہیں کتنی بار کیا عقیقہ؟ ایک بار کیا. اگلے سال پھر کیا؟ نبی بننے کے بعد کیا تھا نا, تو نبی بننے کے بعد آپ کتنے سال دنیا میں رہے؟ 23 سال میں ایک بار, اور آپ ہر سال منا رہے ہیں, یہ کون سی دلیل ہے؟ اور وہ کس ڈیٹ کو عقیقہ کیا تھا؟ ہے ڈیٹ اس کی, صحابی نے ذکر کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا. اگر واقعی وہ ڈیٹ امپورٹنٹ ہوتی, صحابہ چھپاتے, اس کا کوئی امپورٹنس نہیں تھا, اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ فلاں ڈیٹ کو کیا گیا. اس ڈیٹ کو یاد رکھنا چاہیے, اس کو منانا چاہیے. کیا صحابہ اس تاریخ کو کچھ مناتے تھے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہے, بس آپ نے عقیقہ کیا. علماء نے اس سے دلیل یہ لی کہ کسی کا عقیقہ اگر نہیں ہوا ہو تو خود وہ اپنا عقیقہ کر سکتا ہے, یا کسی کا عقیقہ اگر صحیح نہیں ہوا ہو تو وہ اپنا عقیقہ پھر سے خود کر سکتا ہے, بعد کی عمر میں بھی کر سکتا ہے. یہ دلیل تو مل رہی. اب عقیقہ تو آدمی کر رہا نہیں ہے, اور اس سے دلیل کیا لے رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید منانے, عید میلاد النبی. اور عام طور سے لوگوں کا عقیقہ کب ہوتا ہے؟ شادی کے دن. پوچھنا پڑتا ولیمہ ہے کہ عقیقہ ہے؟ بولے دونوں ہیں. اچھا, 7 دن کا آج ہوا کیا؟ تو 7 دن کا آج ہوا, یہ کون سا عقیقہ ہے بھائی؟ یعنی آپ سوچیے کہ کیا مسلمانوں میں, اور دلیل دینے والے ان کو پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کے سکون سے پانی ایک گھونٹ پی کے سوچے وہ ہم کیا بول رہے ہیں, کیا دلیل دے رہے ہیں, کہاں جوڑ رہے ہیں عقیقے کی دلیل کو عید میلاد النبی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو اس سے یعنی پھر کوئی آدمی مثال کے طور پر اگر اپنے عقیقے کو ہر سال منائے تو کیا غلط ہے؟ بولے آج عقیقہ ہے میرا. ارے تیرا عقیقہ پچھلے سال تو ہوا تھا. بولے اور ایک بار ہے, ہر سال عقیقہ اپنا آتا ہے, چلے گا ایسا؟ بولے آج اس سال کون سا نام رکھا تو نے؟ ہر سال. اور بھی پوچھ سکتا ہے کچھ, کیونکہ عقیقے کے دن نام بھی رکھا جاتا ہے. حدیث میں کیا ہے؟ عقیقہ, سر کے بال مونڈو, ختنہ کرو, نام رکھو, اور جانور اس کی طرف سے ذبح کرو. اب اس کو پوچھا جائے گا, بھائی تو عقیقہ کر رہا ہے, ہر سال کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک بار عقیقہ تجھ کو دل نہیں بھرا تیرا, ہر سال کر رہا ہے, سر بھی مونڈے گا اور نام بھی نیا رکھے گا, ہر سال ایک نیا نام, کیا بولیں گے بتائیے؟ کیا دلیل لیتا ہے آدمی؟ اس سے جتنا لینا ہے اتنا لینا شرافت ہے, اس سے زیادہ لینا مصیبت ہے, کیونکہ خود کے پھر مصیبت آ جائے گی. ہر سال اس سے نکلتا ہی نہیں, اگر نکلتا ہے تو بھی ہر سال عقیقہ اپنا کر. ہمارے نبی نے کیا نا, تو نے اس میں ہر سال کدھر ہے, تو کیوں منا رہا, تو کیوں منا رہا, اور عید تو ہے ہی نہیں اس میں, عید کہیں بھی نہیں ہے. تو اس کو بھی بطور دلیل بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے. بہرحال کچھ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے, پانچویں دلیل پہ ہم لوگ آ رہے ہیں, پانچویں دلیل, کچھ لوگوں سے کہا جاتا ہے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 تاریخ کو ہوئی اور آپ 12 تاریخ کو عید مناتے ہو, تو اس تاریخ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, مان لو اس کو پیدائش بھی ہے, پیدا بھی 12 تاریخ کو ہے اور وفات بھی 12 کو, مان لو اس کو, چلو تو تم کو غم منانا چاہیے خوشی؟ تو کہتے خوشی کیسے؟ دلیل, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ, بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے, سورج نکلتا ہے, وہ کون سا ہے؟ جمعہ کا. دیکھیے دلیل ہے, سب سے افضل دن جمعہ ہے. فیہ خلق آدم, اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, تو عید کا دن ہوا ہے پیدائشی. فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ, اور اسی دن کیا ہوئے؟ جنت میں داخل کیے گئے. وفیہ اخرج منہا, اور اسی دن جنت سے نکالے گئے. ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ, اور قیامت قائم ہوگی تو وہ بھی کون سے دن ہوگی؟ جمعہ کے دن. بولے ہماری دلیل یہ ہے, یہ مسلم کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی جمعہ, پھر جنت میں گئے خوشی کا دن بھی جمعہ, जन्नत से निकले गम का दिन भी जुमा और कयामत का दिन भी डर का दिन जुमा। देखो खुशी गम डर सब जमा हो रहे तो मनाने का क्या उसको जुमा ईद है। तो कितनी प्यारी दलील है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन को ईद करार देने से वो ईद बनी या हम अपने तौर पर हमने उसको ईद बनाया, सवाल ये है। अगर वाकई ऐसा कोई दिन है कि जिसमें खुशी मनाना चाहिए जैसा कि जुमा है जिसमें इबादत की जाती है, लेकिन बाद लोगों का जुमा कैसा होता है, जुमा पढ़े और कहां जाना है अभी जुमा के बाद दूसरा शो देखने जाना है। बहुत सारे लोगों का ये मामला होता है, उनका ईद उनकी ईद ऐसी होती, बल्कि ईदें तकरीबन ऐसी होती हैं कि हमारे दो ईदें होती हैं, एक फुल ईद ओरिजिनल और दूसरी कौन सी होती है अगले दिन बासी। बासी ईद में क्या होता है, फिल्में देखते हैं, गार्डन में घूमते झूमते हैं, जो भी करते हैं। तो ये ईद हमारे इस तरह से मनाने का तरीका, इस्लाम में ईद का ये तसव्वुर नहीं है। बेहयाई और गुनाह का, नाचने गाने का, ढोल ताशों का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ईद ऐसी मनाई जाती है, बहुत सारे मुसलमान इस तरह से मनाते हैं। तो जुमा की ईद क्या है, जुमा को ईद कैसे मनाया जाता है, नमाज के जरिए से। अगर वाकई 12 रबीउल अव्वल भी ईद होता तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा को बता दिया कि ये दिन ईद का दिन है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुश्किल था कि आप 12 रबीउल अव्वल को या 9 रबीउल अव्वल को या जो भी दिन आपकी पैदाइश का है आप उस दिन बता नहीं देते मुसलमानों को ये भी ईद का दिन है, क्या प्रॉब्लम क्या है बताने में, आप बता रहे जुमा ईद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया कि 12 रबीउल अव्वल ईद है। तो बहुत सारे लोग जुमा से दलील लेते हैं, देखो इस दिन आदम अलैहि सलाम पैदा हुए, आदम अलैहि सलाम के पैदा होने से वो ईद नहीं बना, इसको याद रखिए, वो ईद बना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसको ईद करार देने से। वरना आप बताइए साल भर में सहाबा ताबईन तबा ताबईन कितने पैदा हुए, क्या हर दिन साल भर ईद है, क्या साल भर ईद ही बोलेंगे कि कोई ना कोई अच्छा आदमी तो पैदा होता, कम से कम अपना गुड्डू तो पैदा हुआ खुशी का दिन। तो हर एक का कोई ना कोई गुड्डू है, आप दवाखाने में जाइए कोई ना कोई मुसलमान रोजा है तो सारा साल एक मुसलमान पैदा हो जाए, कोई एक बढ़ गया मुसलमान अपना भाई आ गया तो पूरा साल दुनिया भर में ईद हो जाएगा, फिर कोई दिन बेईद है ही नहीं। तो बासी ईद का तस्वीर इस्लाम में नहीं रहेगा, जब हर दिन ओरिजिनल ईद है तो बासी कैसा, बासी होगी नहीं कोई। ये इस तरह की खुराफात हैं। देखो जिसको मनाना होता है वो कैसा भी मनाता है, जिसको ईद मनाना ही है वो रोते रोते भी मनाएगा, उसको मनाना है। तो ये भी दलील इसमें पेश की जाती है कि जुमा ईद है, तो हम कहते जुमा ईद है इसलिए कि जुमा के लिए दलील है, दलील है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल के लिए दलील नहीं है कि इसको ईद मनाना चाहिए। छठी दलील इसमें यह भी जिक्र की बात लोगों ने कहा कि देखिए मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन से नजात दी तो उस दिन उन्होंने बतौर शुक्र रोजा रखा तो वो ईद का दिन हो गया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं अन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदिम अल मदीना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, हिजरत करके मक्का से मदीना आए। फवजद अल यहूद सियामन यौम आशूरा, आपने देखा यहूद को कि आशूरा के दिन, आशूरा कब है, 10 मुहर्रम को आशूरा होता है, आशर की वजह से वो आशूरा, तो आशूरा का रोजा यहूदी रखते थे। फकाल लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उनसे कहा मा हादल यौम अल्लज़ी तसुमूनहु, ये जो दिन तुम रोजा रखते हो ये क्या है, आशूरा का दिन तुम रोजा रखते हो वजह इसकी क्या है। फकालु हादा यौम अज़ीम, यहूदियों ने कहा यह बहुत बड़ा दिन है, अंजल्लाहु फीही मूसा व कौमहु, इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम और उनकी कौम को नजात दी बचाया, व गर्रक फिरऔन व कौमहु, और फिरऔन और फिरऔन की कौम को अल्लाह ताला ने डुबो के बर्बाद कर दिया। फसामहु मूसा शुक्रन, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के शुक्र के तौर पर इस दिन रोजा रखा। फनहनु नसूमुहु, तो हम भी इस दिन रोजा रखते हैं। ये किसने कहा? यहूदियों ने। فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, इस पर अल्लाह के रसूल صلى الله عليه وسلم ने फरमाया, فنحن احق واولى بموسى منكم, मूसा से तुमसे ज्यादा तो हमारा रिश्ता है, मूसा के तुमसे ज्यादा हम हकदार हैं, यानी अगर उन्होंने अमल किया है तो हम भी करेंगे, तुम करते हो तो तुमसे ज्यादा तो हम हकदार हैं उनके, क्योंकि हमारा उनका दीन एक ही है। فنحن احق واولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه, तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी आशुरा के दिन रोजा रखा और आपने सहाबा को भी, मुसलमानों को भी इस दिन रोजा रखने का हुक्म दिया। इसको इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। लोगों ने इसको भी दलील बनाया, डूबते को दिन की का सहार है, मरता क्या ना करता बोलते ना, जैसे कुछ तो हाथ आए, ये लोग दे रहे नहीं कुछ हमको पकड़, बोले सब सही दलीलें हैं, लेकिन सही दलील से बात भी वही निकलना चाहिए। यहां पर लोगों ने इससे दलील किस तरह से ली, उन्होंने कहा देखिए बहुत दूर से सोच के, जैसे आदमी को गड़ा पार करना हो, छलांग लगाना हो, तो उसको क्या करना पड़ता है, बहुत पीछे से भागते आना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा देखिए इसमें दलील कैसे निकलती है कि मूसा अलैहि सलाम के पीछे फिरौन उनको कत्ल करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए लगा, अभी किनारे पर पहुंचे, अल्लाह ने इनको पार करा दिया, फिरौन को डुबो दिया। तो इतना बड़ा वाकया इस दिन हुआ है कि अल्लाह ताला ने उम्मत को नजात दी, मूसा अलैहि सलाम को और उनकी उम्मत को फिरौन से बचाया, तो एक बहुत अजीम शान दिन था, ये बातिल पर हक का गलबा साबित होने का दिन था, ये अल्लाह ताला ने हक की मदद की, बातिल को अल्लाह ने डुबो दिया। अब देखो इससे बढ़ के हक और इससे बढ़ के खैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मूसा अलैहि सलाम से अफजल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जो गुमराही थी फिरौन की वो लोकल थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो दुनिया पूरी की पूरी क्या थी, गुमराही और अंधेरे में थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलमीन के लिए नबी बनाकर भेजे गए, जबकि मूसा अलैहि सलाम एक मखसूस कौम के लिए थे। तो जब उन्होंने उस जीत के दिन को मनाया शुक्र के तौर पर, तो मूसा अलैहि सलाम का फिरौन से बचना अगर शुक्र है, इस पर शुक्र होना चाहिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने पे तो कितना शुक्र होना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी इंसानियत को गुमराही से बचाने के लिए आए थे, तो इस पे तो ज्यादा शुक्र होना चाहिए। तो ईद मिलादुन्नबी मनाना चाहिए, फिर घूम फिर के उतरी। हम कहते हैं ठीक है, अगर वाकई ऐसा मान लेते हैं तो मूसा अलैहि सलाम ने फिरौन जैसे से बच के एक रोजा रखा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कितना बड़ा एहसान अल्लाह का है, पूरा साल भर ही तुम लोग रोजा रखना शुरू करो, अभी कितने भी रोजे रखो कम ही शुक्र है, रखेंगे ये अपने से नहीं होता। उन्होंने शुक्र के तौर पर क्या किया, गाना बजाना किया, जुलूस निकाला, बनी इसराइल क्या किए, नकली दाढ़ी लगा के टीपू सुल्तान की म्यूजिक के साथ घोड़े पे बैठे, वो भी किराए का घोड़ा, इसका भी नहीं, अगर बिदक गया तो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आएगा, टीपू सुल्तान पूरा उल्टा सीधा घोड़े के नीचे सीधा, कहां दाढ़ी, कहां जुब्बा, कहां डंडा, तलवार भी मालूम नहीं किधर है, क्या है? ये शुक्र का तरीका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और आपका हमारे लिए नजात वाला दीन लेकर आना, उसका शुक्र मनाने का ये तरीका है कि हम जुलूस निकालें, हम चीख पुकार करें, और हम यानी नकली दाढ़ी लगा के मजाक बनाएं दीन का, या कम से कम किसी को फ्रेंच दाढ़ी जाने तो ये कम से कम फ्रेंच दाढ़ी तो है, उसको फ्रेंच दाढ़ी इस्लाम में है, यानी हमारे लिए भी दाढ़ी भी कौन सी, फ्रांस की, कोई तरीका ही है। जुब्बा पहन के घोड़े पे बैठना, ये क्या है, नकली इस्लाम पेश करना लोगों के सामने। तो इस तरह का जुलूस इसमें किधर है? क्या बनी इसराइल ने जुलूस निकाले वहां पे घोड़ों पे ऊंटों पे बैठ के? नहीं, उस दिन को उन्होंने नाच गाने का दिन बनाया? नहीं। तो यहां आज इससे दलील लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन ये सब जो किया जा रहा है ये क्या है? और मूसा अलैहि सलाम ने, आप सोचिए, फिरौन अभी कितना बाद वक्त अफसोस होता है कि इंसान को अल्लाह ने अकल दी लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करना, ये खुद नाशुक्री है कि मूसा अलैहि सलाम फिरौन के गर्क के लिए ही थे। अल्लाह के जरिए से तय था कि होना है ऐसा। मूसा अलैहि सलाम ने जब फिरौन से नजात मिली तो उस दिन बतौर शुक्र रोजा रखा, लेकिन क्या बनी इसराइल ने मूसा अलैहि सलाम की पैदाइश का दिन मनाया? सोचने की चीज है कि बनी इसराइल ने भी, मूसा अलैहि सलाम ने भी उस दिन रोजा रखा जिस दिन नजात मिली, न कि वो दिन जिस दिन मूसा अलैहि सलाम पैदा हुए। आप देखिए, सहाबा ने अगर ऐसा ही दिन तारीख में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख में अगर कोई हो सकता है तो वो एक दिन था। कौन सा था? बद्र का दिन था, जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ करते करते चादर कंधों से गिर गई थी और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला पीछे से आके लिपट गए थे और चादर वापस कंधों पर रख के कहा था, अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, आप क्यों इतना तकलीफ उठाते हैं, क्यों इतना गिड़गिड़ा रहे, अल्लाह से अल्लाह मदद कर। आप दुआ कर रहे थे, अल्लाह अगर आज तूने मदद नहीं की इस छोटी जमात की तो कयामत तक तेरी इबादत करने वाला नहीं रहेगा जमीन पर। इतना दुआ कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे बद्र की रात में, जिसमें मुसलमान सिर्फ 313 थे, जिसमें से बहुत यानी तकरीबन 305 या 308 ही लड़ने लायक थे, और किसी के पास ढाल है तो तलवार नहीं, तलवार है तो ढाल नहीं, तलवार है तो टूटी हुई तलवार है, सवारी नहीं है कितनों के पास, एकदम कमजोर लश्कर था वो, और मुशरिकीन 1000 सामने हैं और नाच गानों के साथ हैं, पूरी ताकत के साथ में खाते पीते हैं, ये बेचारे भूखे भूखे कमजोर कमजोर। वाकई वो दिन था जिस दिन जैसा फिरौन का मामला है, फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का, कि आज तो मदद होना ही चाहिए, वो एक दिन था। क्या सहाबा ने बद्र के दिन को ईद के तौर पर मनाया? आप बताइए, पूरी तारीख में अल्लाह के नबी बद्र बिल्कुल इब्तदाई मदनी सालों में, इब्तदाई मरहले में हुआ है, उसके बाद तकरीबन 8-10 साल मुसलमान रहे और सहाबा तो बाद तक रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई उसके बाद। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने बद्र के वाकये को बतौर ईद मनाया? नहीं। तो हम कहां से दलील लेने लगे, हम कहां से दलील लेने लगे कि मूसा अलैहि सलाम की नजात हुई, उस नजात से फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और पैदाइश मनाने? कौन सी दलील है, कहां से ला रही है? एक तो ये कि आदमी कुरान और हदीस की तरफ आता नहीं, आता तो इनको वहां ले जाता जहां इसको जाना है। कितनी अफसोस की चीज है, हमको कुरान और सुन्नत को अपने ताबे करना है, अपनी सोच के ताबे करना है, या अपनी सोच को कुरान और सुन्नत के ताबे करना है, यह हमको तय करना है, यह हमको तय करना है। बहुत अफसोस ये है कि बहुत सारे लोग कुरान और सुन्नत को अपनी चाहतों के ताबे कर लेते हैं, या तो आते नहीं, आए तो फिर इसको ले जाते हैं, जहां खुद को जाना है अपने पीछे कुरान और सुन्नत को ले जाते हैं, जबरदस्ती तोड़ मरोड़ के उससे जो जी चाहे निकालते हैं। ये ऐसा ही है जैसे ईसाई कहें कुरान में नहनु आया है ना, तो नहनु प्लूरल के लिए आता है तो तीन अल्लाह साबित होते हैं इससे। ये इस तरह से तरीका कोई भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है इससे। तो बहरहाल ये जो दलील है, इससे अगर ये ईद मिलादुन नबी साबित होती है तो इसको पहुंचाने वाले सहाबा हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम का दिन आशूरा का बतौर शुक्र मनाने वाले सहाबा हैं, और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो आप बताइए, जब वाकई इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन मनाना साबित होता है तो फिर वो क्या वजह थी कि उनको समझ में नहीं आया, यानी उनको समझ में नहीं आ रहा इससे नबी की पैदाइश भी मनाना चाहिए मूसा अलैहिस्सलाम से, और ये बाद वालों को समझ में आ रहा है जिनको अपना नाम भी अरबी में लिखना नहीं आता है, जिनको जो खुद बाद वक़्त कहने लगते हैं कुरान और सुन्नत ज्यादा इस तरफ जाओ मत, जैसा बड़े अपने बता रहे उनके पीछे चलो, जैसा अपने पीर साहब बता रहे उनके पीछे चलो, तो यही लोग जो कुरान सुन्नत से रोकते हैं, जब दलील देने पे आते हैं तो इस तरह से साबित करना शुरू करते हैं। यही मुसीबत है। सातवीं दलील, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल मायदा। ईसा अलैहिस्सलाम के हवारीयीन ने उनसे मुतालबा किया, आसमान से एक हमारे लिए मायदा आना चाहिए, एक खान, एक दस्तरखान, एक खाने, पूरा एक खाने की चीजें उतरना चाहिए। अल्लाह ने उसको जिक्र किया, इद काल अल हवारीयून या ईसा बिन मरियम, जब हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, ए ईसा इब्न मरियम, हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतन मिनस समा, क्या आपका रब ऐसा कर सकता है कि आसमान से हमारे लिए एक दस्तरखान नाजिल कर दे। قالت تقوا الله ان كنتم مؤمنين, ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अगर वाकई तुम लोग ईमान वाले हो तो डरो अल्लाह से। क्या मांग रहे हैं, यानी हमको ऐसा करके बताओ, अल्लाह को बोल रहे, अल्लाह से मुतालबा कर सकते हैं इस तरह से कि अल्लाह ऐसा है तो बता हमको, अल्लाह कर सकता कि जरा बता हमको, अल्लाह को इस तरह से अल्लाह का इम्तहान नऊज़ बिल्लाह नहीं ले सकते हैं, अपने मुतालबा जो भी अल्लाह को इस तरह से नहीं कर सकते, हमको ऐसा करके बता। सवाल कैसा था, हल यस्तती और रब्बुक, क्या आप करो ऐसा कर सकता क्या, आसमान से हमारे लिए दस्तरखान उतार दे, यानी खानों के साथ में। قالت تقوا الله ان كنتم مؤمنين, ईसा अलैहि सलाम ने कहा, अगर वाकई ईमान वाले हो तो डरो अल्लाह से, यानी क्या तुम्हारा अभी ईमान नहीं है। قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا قلوبنا, उन्होंने क्या कहा, नहीं ऐसा नहीं, शक नहीं कर रहे हम लोग। قالوا نريد ان ناكل منها, उन्होंने कहा हम तो बस इतना चाहते हैं कि जब वो आसमान से आए तो हम उसमें से खाएं। وتطمئن قلوبنا, और हमारे दिलों को क्या हो, एकदम इत्मीनान हो जाए। हाँ अब सही है, हमारा मामला क्या है, सही, दिलों को इत्मीनान हो जाए। وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا, और हमको पक्का यकीन हो जाए कि वाकई आपने जो भी हमसे कहा है ईसा अलैहि सलाम ने वो सब सही है, हमको यकीन हो जाए पक्का। وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ, और जब ये दस्तरखान आसमान से आ जाए तो अल्लाह की कुदरत के हम खुद क्या हो जाएं, गवाह हो जाएं, तो हम खाएं और हम क्या करें, हमारे दिलों को इत्मीनान हो जाए और आपके नबी होने का पुख्ता यकीन हमको मिल जाए और हम खुद इस बात के क्या हो जाएं, बाद वालों के लिए गवाह हो जाएं। قال عيسى ابن مريم, इस पर ईसा अलैहि सलाम ने बतौर दुआ कहा, اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء, ऐ हमारे रब, ऐ अल्लाह, हम पर, अंजिल अलैना माइदतन मिन अस्समा, हम पर आसमान से तू माइदा दस्तरखान नाजिल कर दे, तकून लना ईदन लि अव्वलिना व आखिरिना व आयतन मिनक, ये दस्तरखान, ये वाकया हमारे लिए, हमारे पहलों के लिए और हमारे बाद वालों के लिए, आखिर के लिए क्या हो जाए, ईद बन जाए। व आयतन मिनका, और तेरी तरफ से क्या हो जाए, ये एक निशानी हमारे लिए हो जाए, साइन हो जाए, मिरेकल हो जाए। वरज़ुकना व अंत खैरु राज़िकीन, ए अल्लाह हमको रिज़्क दे, हमको रिज़्क अता फरमा, यकीनन तू बड़ा बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। قال الله اني منزلها عليكم, इस पर अल्लाह ने कहा मैं अनकरीब तुम पर ये दस्तरखान नाजिल करने वाला हूं। فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ, देखो मैं नाजिल तो करूंगा लेकिन अगर नाजिल होने के बाद तुम में से अगर किसी ने कुफ्र किया, मानने से इनकार किया, तो ऐसा अजाब उसको दूंगा कि इससे पहले मैंने किसी को अजाब ना दिया हो। चाहिए तुमको, ठीक है नाजिल करें, फिर मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तुम्हारे पर ऐसा अजाब आएगा कि फिर इससे पहले किसी को अजाब ना हुआ। ये सूरह अल-माईदा की आयत नंबर 112 से 115 तक। इससे बाद लोगों ने दलील ली, क्या दलील ली, उन्होंने कहा देखिए ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, क्या दुआ की, ए अल्लाह आसमान से तो हमारे लिए दस्तरखान नाजिल कर, तो ये दस्तरखान नाजिल होने के दिन को हम क्या कर लें, ये हमारे लिए क्या हो जाए, کہ تکون لنا عیدن لاولنا واخرنا، ہمارے پہلے اور آخر یعنی ہماری پوری امت کے لیے یہ دن دسترخوان نازل ہونے کا کیا ہو جائے، عید کا دن ہو جائے. اس سے لوگوں نے دلیل لی، دیکھیے جب آسمان سے دسترخوان نازل ہونے والا دن عید بن سکتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کیوں عید نہیں ہو سکتا ہے؟ اب اس سے استدلال کرنا دو وجہ سے غلط ہے. ایک تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خود نبی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تو دسترخوان نازل کر دے تاکہ ہمارے لیے عید ہو جائے. ظاہر بات ہے کہ نبی اگر کسی چیز کو عید قرار دے دے تو وہ عید ہے، ہم اپنے طور سے نہیں کر سکتے. اگر کوئی نبی بتائے فلاں دن پیر کا دن عید ہے، ٹھیک ہے پیر ہے، اتوار ہے تو اتوار ہے، جمعہ ہے تو جمعہ ہے، ہم نہیں جانتے کیا عید ہے، ہم کو کون بتائے گا؟ نبی بتائیں گے. تو اس شریعت میں عیسیٰ علیہ السلام جس کو عید کہیں وہ عید ہے، ماننا پڑے گا. لیکن کیا ان کی عید ہمارے لیے ہو سکتی؟ عید نہیں. کیوں؟ ہماری شریعت کیا ہے، الگ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر واقعی اس طرح سے عید ہم بنا سکتے ہیں تو صحابہ نے کوئی عید کیوں نہیں بنائی؟ ایک عید بتا دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طے شدہ عید کے علاوہ صحابہ نے بنائی ہو، کوئی دن بتا دو. صحابہ نے نہیں کیا ایسا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے استدلال غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک، وہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، وہ جس دن کو چاہیں عید قرار دے دیں، وہ اللہ کی رہبری میں کام کرتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اگر عید کہہ دیں تو ان کے لیے عید ہے. دوسری چیز یہ کہ ان کی شریعت الگ تھی، ہماری شریعت الگ ہے. وہ اس امت کے لیے نبی تھے یا ہمارے لیے؟ وہ ہمارے لیے نئی شریعت والے نہیں، ہم ان کو نبی مانتے ہیں، لیکن ان کی شریعت آج چلے گی؟ نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل اور زبور تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، اور ہمارے لیے کون سی کتاب ہے؟ اب قرآن ہے. پچھلے سارے نبیوں کی نبوت اپنی جگہ قائم ہے، باقی ہے، لیکن ان کو صرف نبی ماننا ہے، ان کی شریعت پر ہم چل سکتے ہیں ابھی نہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لو کان موسی حیا و ادرک نبوتی ما وسعه الا اتباعی. اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو ان کے لیے میری اتباع کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا. بلکہ آپ نے صحابہ سے کیا کہا؟ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموه وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. اگر آج موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جاتے، دیکھیے اس کے الفاظ کیا ہیں، اگر آج موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جاتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے چلنے لگ جاتے تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے. تو آج ہمارے لیے شریعت کس کی ہے؟ ہماری شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس شریعت میں ہم اپنے طور پر عید بنا سکتے ہیں؟ نہیں. عیدیں جو ہیں انہی عیدوں کو عید مان کے چلنا ہے. اپنی طرف سے عید ایڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس سے دلیل لینا غلط ہے، اس لیے کہ یہ اس شریعت میں تھا. ہماری شریعت میں جو عیدیں ہیں ہمارے نبی نے ہم کو دے دی. جتنا نبی نے دی بس نہیں ہوا کیا؟ اور چاہیے تو جتنا نبی نے دیا، شرافت اس میں کہ جتنا دے دیا لے لو. یا ایسے ہی جیسے آدمی کہے ایک پارا اور دے دو ہم کو، ایک سورہ اور دو ہم، بس نہیں ہوا، تھوڑی ترابی اور لمبی کرنی ہے، کر سکتے ہیں، ایک رکعت اور دے دو ہم کو، تو کر سکتے ایسا. مغرب کی تین آڈ ہو رہی، باقی دو چار دو چار، تو ہم کیا کریں گے؟ تین کو بھی چار کریں گے، کر سکتے. ایک رکعت اور مانگنے کے لیے بولیں گے کسی کو، اللہ والے کو، کوئی بابا کو بولیں گے وہ تو لا کے دے دے گا آپ کو جلدی سے، اللہ والے نہیں دیں گے، بابا دے دے گا جلدی سے. بولیں گے ایک دو دیتا ہوں، پانچ کر دو تین کے، یہ بھی کوئی بات ہے. اور ایک تم چاہو تو بڑھا سکتے ہو، میں تم کو بھی اختیار دے دیتا ہوں، ایسا کر دے گا وہ. تو اپنی طرف سے ہم دین میں کسی بھی چیز میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں. عید تو اتنی بڑی چیز ہے، پورا دن کا دن ہو، اس کو آپ بالکل عید نیا لا رہے، کوئی بھی عید مطلب مذاق ہے. سوچنے کی چیز ہے کہ آدمی، عجیب بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں کسی اور کو کوئی تبدیلی کرنے دیتا نہیں. آپ کا ٹوائلٹ ہے، और पड़ोसी आपका बहुत मोहब्बत है, आप उसके पास से नमक लाते हुआ आपके लिए इस पास से शकर ले जाता है, बहुत प्यारे गले बहुत मिलते ईद के दिन। अब उसने क्या किया, उसने आपका जो टॉयलेट जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था आप जरा गए कुछ ईंट लाने के लिए, अब उसने क्या कर दिया, कुछ का कुछ कर दिया, खिड़की इधर बना दिया, ऊपर कुछ डाल दिया, इधर कुछ कर दिया, बोले भाई भाई हम लोग तो अब कुछ भी बना दिया उसने अपनी तरफ से, आप आने के बाद उसको बख्शोगे? आप बोले कि कैसा किया तुम, मेरा घर है ये, आप कर सकते इसमें कुछ भी? आप नहीं कर सकते। चाचा आ गए आपके घर में आ गए और आप अभी ऑफिस से आए नहीं हो, उन्होंने देखे मेरा भतीजा इसने सोफा इधर रखा है, इसने कुर्सी यहां रखा है, इसका फ्रिज यहां पर है। चाचा ने क्या कर दिया, सोफा उठा के डाल दिया उधर किचन में, कुर्सी सीधा टेरेस के ऊपर, जा बैठ ऊपर, इधर का उधर किचन के बर्तन बेडरूम में, बेडरूम का सामान किचन में लाके सब बोल दिया। और चाचा कैसे हैं, हाजी साहब हैं। अब दोनों आए बीवी शोहर बाहर से, या आया ये बाहर से, अब आने के बाद देख रहा है मेरे घर है कि दूसरे का है। और चाचा उसको दरवाजे पे इस्तकबाल के लिए मिले, आ जरा तुझको मैं बताता हूं कि आज मैंने पूरी सेटिंग किया, ये आते ही पहले चाचा की सेटिंग कर देगा, सीधा बाहर, अभी गए आना नहीं वापस, ईद को भी नहीं आना। पसंद करेगा ऐसे, तुम्हारे घर में जाके करो, मेरे घर में आके मत करो, ये मेरा घर है, यहां जैसा मैं कोई चीज रखता हूं वैसा, जूते की जगह जूते, चप्पल की जगह चप्पल, किताब की जगह किताब, बर्तन की जगह बर्तन, तुमको हक क्या पहुंचा, तुम अपने घर में जाके करो। दूसरे को अपने घर में कुछ भी करने देता नहीं, अल्लाह के दीन में कुछ भी कर रहा है इसकी औकात है, अल्लाह के दीन में कुछ भी कर रहा है, इधर से ईद बढ़ा दिया, उधर से जिक्र बढ़ा दिया, उधर से जुलूस बढ़ा दिया, उधर से कुछ भी बढ़ाया, इसको क्या हक पहुंचता है अल्लाह के दीन में करने का। इसके मोबाइल में कोई हाथ लगा दे, हाथ लगाने देता नहीं है। इसके कपड़ों को टेलर को दे दिए कपड़े, अब टेलर साहब ने देखा इसको एम्ब्रॉयडरी ऐसी बहुत अच्छी दिखेगी, इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, टेलर साहब ने अपनी तरह कुछ भी सी दिया, इसको बटन की बजाय नाड़ा लगा दिया, नाड़े की जगह बटन लगा दिया। जीन्स को उसने बोला था मेरी जीन्स को चेन लगाना, फुला कंपनी की चेन लगाना, हो नाड़ा लगा, मसला क्या है, नाड़ा लगा। बटन सोने की बोला था इसने, बड़े बड़े बटन लगा दिए एकदम हाई फाई, दूर से भी दिखना चाहिए बटन है, कोई आके दबाए, चमचम एकदम लाइट लग रही उसके अंदर, पसंद आएगा इसको, क्या करके रख दिए। टेलर बोलेगा बहुत अच्छा दिख रहा है तो उसने, अरे अच्छा छोड़ो ये मेरी पसंद, मेरा कपड़ा है, मेरा कपड़ा है, तुम्हारा काम है जैसा मैंने बोला वैसा सीना। टेलर बोलेगा ठीक है ले जाओ नहीं मुझको चाहिए कपड़ा, ये मैं नहीं लूंगा इसको। आप बताइए, आप अपने कपड़े कबूल नहीं करते हो, अपनी मर्जी से एक्सपर्ट टेलर है वो भी सऊदी रिटर्न है, लेकिन उसने अपने दिल से अगर सी के दिया आपके कपड़े, आप नहीं लोगे, आप बोलोगे मैंने जैसा बोला था वैसा सीना चाहिए था। आप अपने दिल से कुछ भी करोगे अल्लाह लेगा उसको, रब्बुल आलमीन है वो, जैसा उसने बताया जिंदगी जीने के लिए वैसा आप जीते तो वो कबूल करेगा, नहीं तो नहीं। आप अपने टेलर पजामा कबूल नहीं करते अपना, वो पूरी जिंदगी लेगा आपकी, कुछ भी जी के आ रहे कैसा भी करके जा रहे दीन में कुछ भी कर रहे हैं आप, वो दीन लेगा ऐसा दीन, आप खुद नहीं ले सकते वो क्यों लेगा, उसका पैमाना बहुत ऊंचा है, हम इतने घटिया हो कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो रब्बुल आलमीन है, सब बिस्म रब्बिकल आला, सबसे ऊंचा है वो, उसका पैमाना बहुत ऊंचा है, वो कबूल करेगा, कुछ भी दीन से खिलवाड़ करके जाएंगे अपनी तरफ से वो कबूल करेगा। अल्लाह ताला माफ फरमाए, हमको समझ अता फरमाए, ये मोटी मोटी मिसालें समझ में आती हैं। हम अपने बारे में आप सोचें, हम कबूल नहीं करेंगे दूसरों से, अल्लाह हम अल्लाह के दीन में कुछ भी कर सकते हैं नहीं, हम अपने कपड़ों में किसी को हाथ लगाने देते नहीं। तो ये इससे दलील लेना पागलपन है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारे लिए और दूसरों के लिए ईद बन जाए और इससे ईद मिलादुन नबी निकालना, ये दलील देना गोया के इस बात की अलामत है कि सहाबा को न कुरान समझता था नऊज़ बिल्ला न हदीस समझती थी, कि इतनी सब दलीलें अगर वाकई वाकई इतनी दलीलें अगर ईद मिलाद नबी की हैं तो फिर सहाबा को कुछ भी नहीं समझता था, ये निकलता है इससे कि भी क्यों मनाया नहीं, जब इससे वो निकलता है तो उनको क्यों नहीं समझाए, या तो वाकई ये निकलता ही नहीं इससे या फिर उनको समझ में नहीं आया इससे, और हम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि कुरान और सुन्नत का सही फहम सहाबा को ना हो जिनको नबी के शागिर्द बनने के लिए अल्लाह ने चुना हो, उनको नहीं समझ रहा, और ये जिसको ठीक से न कुरान पढ़ने आता हो न दीन की बुनियादी बातें उसको मालूम हो ये इससे दलीलें निकालने लगे तो ये बहुत ही बड़ा दावा है और सहाबा की शान में गुस्ताखी का दावा है। तो हम ये मानते हैं कि जब उनको इतना सब होने के बाद भी नहीं समझाना, नहीं है करके तो उन्होंने नहीं किए, होता तो इससे उनको भी समझता। नंबर 8, उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अन्न रजुलन मिन अल यहूदी قال له يا امير المؤمنين, एक यहूदी ने, देखिए आदमी कहां कहां से दलील लाता है, अब देखिए, एक यहूदी ने उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ए अमीर المؤمنین, ये कब की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की ये बात की है, बात की है, अमीर المؤمنین उस जमाने में थे आप सलाम के जमाने में, बाद में बने हैं, ये अबू बकर सिद्दीक के भी बात की बात है, तो जाहिर बात है कि उसके बाद ईद मिलाद नबी आई होंगी, कुछ 2 साल तो कहीं नहीं गए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के, 30 साल हैं खुलफाए राशिदीन के, 30 साल, 30 साल में एक बार भी आप बता दें ईद मिलाद नबी मनाएंगे, तो यहूदी ने कहा, ए अमीर المؤمنین आयतुन फी किताबिकुम तकराउनहा, तुम्हारी किताब में एक आयत है जिसको तुम पढ़ते हो, लो अलैना माशर अल यहूदी नज़लत लतखदना ذلك اليوم عيدا, अगर हम यहूदियों पर वो ऐसी आयत नाजिल होती तो उस आयत के नाजिल होने के दिन को हम ईद का दिन बना लेते, किस पे नाजिल होती, यहूदियों पे, तो हम उसको क्या करते, ईद का दिन बना लेते। قال اي ايه, तो मैंने पूछा कौन सी आयत है, قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا, आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए कामिल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और इस्लाम के दीन होने पर तुमसे राजी हो गया, इस्लाम को बतौर दीन मैंने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया, ये अल्लाह ने कहा। قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم, तो मैंने कहा हमको मालूम है वो दिन कौन सा था जिस दिन की तुम बात कर रहे हो, इस आयत के नाजिल होने का दिन हमको मालूम है वो दिन कौन सा था, वल मकान अल्लज़ी नज़लत फीही अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको जगह भी मालूम है कि कहां ये आयत नाजिल हुई है, टाइम एंड प्लेस दोनों हमको मालूम है, दिन भी मालूम जगह भी मालूम, वहुवा क़ाइमुन बिअरफत यौम जुमअती, ये वो दिन है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज में अरफा के मैदान में थे, अरफात के मैदान में थे, अरफा में थे, और वो दिन कौन सा था, जुमा का दिन था, इसको इमाम अल-बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। इससे क्या साबित हो रहा है, ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए, बाद वक्त कैसा होता है, एक आदमी ठहरा है मस्जिद के बाहर, फकीर आके उसको बोलता जरा कुछ दे दो भाई, बोलता भाई माफ कर दो नहीं है मेरे पास, फिर थोड़ा इधर उधर से घूम के आके फिर बोलता भाई कुछ दे दो, तो एक आदमी को जब साबित करना ही है तो ऐसा पीछा पकड़ लेता, कुछ ना कुछ लेके आता, मेरा बेटा बीमार है थोड़ी देर के बाद जाएगा, मुझको गांव जाना है पैसे चाहिए, बोले मेरे शोहर का ऐसा करना है, मेरी बीवी का इलाज करना है, कुछ ना कुछ आदमी एक मस्जिद में एक दूसरी मस्जिद में दो कहानी, एक दो तीन जितनी मस्जिद है उतनी कहानी, तो आदमी कुछ ना कुछ करके जब पाना चाहता है तो ऐसा करता है। आप बताइए जिस रिवायत में बिदात का रद्द है उसको बिदात के लिए दलील बनाना कितनी डेरिंग की चीज है, आयत क्या है उसमें, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए कामिल कर दिया, यानी दीन कामिल हो चुका था तब तक, अब कुछ एडिशन की जरूरत है नहीं, लेकिन उससे फिर बाद में क्या बोलना, ये ऐसा है इसलिए एक एडिशन करना बाकी अपना, क्या है वो एडिशन, ईद मिलादुन्नबी, अरे इसी में आ रहा है कि अल्लाह ने उस मैदान में कहा है कि तुम्हारा दीन कामिल हो गया है, लेकिन उसी को दलील बना के क्या साबित कर रहे हैं, एक ईद अपनी बाकी है, छूट गई उपहरों से, एक ईद थोड़ी अपनी पेंडिंग है, वो पोस्टपोन होते होते क्या हुई, 300 साल तक पोस्टपोन हुई, 400 साल तक हो गई, अब चलो उसको पाबंदी से मनाएंगे। क्या तरीका है, कौन सा इस्तिदलाल है, ये जुनून है। दूसरी बात, इसमें दो लोग हैं, इस वाकये में या इस रिवायत में दो लोग हैं, एक मुसलमान एक यहूदी। यहूदी का क्या करना हुआ, यहूदी ने क्या कहा, मुसलमान ने क्या कहा, मुसलमान ने क्या किया। यहूदी क्या बोल रहा है, आप लोगों के पास एक आयत ऐसी नाजिल हुई है, अगर वो हमारे यहां नाजिल होती ना, हम वो दिन ईद का बनाते थे। यानी अपने हिसाब से ईद बनाना किसका तरीका है, और उससे दलील कौन ले रहा, तुम्हारे ने क्या कहा, हमको मालूम है वो दिन कौन सा था और कौन सी जगह थी, दो ईदें जमा थी उस दिन, ऑलरेडी ईद के दिन ही नाजिल हुआ है, उसके नाजिल होने से ईद हुई है, जुमा का दिन क्या है, ऑलरेडी वो तो फाइनलाइज हो गया, पार हो गया, जुमा ईद है, और अरफा वो एक और हाजियों का दिन है, तो दो ईदें, हाजी और गैर हाजी दोनों की ईद एक दिन जमा हुई, उस दिन अल्लाह ने क्या कर दिया, तो अल्लाह ने ईद का दिन चुना, और वो क्या बोल रहा है, अगर हमारे नाजिल होती तो हम उसको क्या बना लेते, ईद का। हाँ, तुमने ही नहीं कहा, हम भी ऐसा कुछ भी अपने हिसाब से ईद बना सकते हैं, तो हम नबी के पैदाइश के दिन को क्या बनाएंगे, ईद बनाएंगे, ऐसा कहा। अगर वाकई इससे ही बात निकलती है तो आप बताइए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल तक खलीफा रहे, 10 साल तक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 साल तक, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 12 साल तक, हज़रत अली 6 साल तक, 30 साल का अरसा है, यानी कम से कम आप देखिए आधी सदी के करीब होता, एक तिहाई सदी पूरी, इन 30 सालों में ये आयत नाजिल हो चुकी थी। क्या इससे दलील लेकर, इस रिवायत से दलील लेकर, क्या किसी भी खलीफा ने, किसी भी मुसलमान ने ईद मनाई, ईद मिलादुन्नबी मनाई? तो जब उन्होंने, उनको समझ में नहीं आया तो बाद में कैसे समझ में आ रहा है, ये समझ में मेरी नहीं आ रहा है। यानी उनकी समझ में नहीं आया, इनकी समझ में आया, अपनी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कैसा हो गया कि अगर वाकई इससे वो निकलता है, वो दलील निकलती है, इस दलील से ये बात साबित होती है, तो सबसे पहले किसने दलील लेना चाहिए, जिनका वाकया है, केस किसका है, इस रिवायत में केस किसका है, उमर रदी अल्लाह तआला का मामला उनका है, साहिब मामला वो है, डिस्कस वो कर रहे हैं उसके साथ, उनको नहीं लग रहा हाँ चलो उन्होंने बनाया ऐसा, इसको बनाते अगर वो अपना ईद का दिन, तो अपने पास कौन सा दिन बचा, एक दिन बचा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन, चलो इसको ईद बनाते हैं, किया है तुमने ऐसा, लेकिन इसकी समझ में आ रहा है बाद वाले के कि हमको ऐसा करना चाहिए। अब दो में से एक है, नऊज़ बिल्लाह, या तो उमर रज़ी अल्लाह तआला का फहम कासिर है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये भी लेना चाहिए दलील इससे, या तो बाद वाले का फहम गलत है और गंदा है। क्या मानेंगे दोनों में से, बाद वाले की अकल बिगड़ी हुई है कि इससे जो चीज नहीं निकलती वो जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारा मनहज क्या है, इत्तिबाउल किताब व सुन्ना अला फहम सलफिल उम्मा, किताब व सुन्नत की इत्तिबा, इत्तिबा किसकी करना है, किताब व सुन्नत की, कुरान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। लेकिन इसकी इत्तिबा में अंडरस्टैंडिंग किसकी होना चाहिए, अपनी नहीं, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग सहाबा की होना चाहिए कि उन्होंने कुरान और सुन्नत को कैसे समझा, उन्होंने उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे किया, उसकी अमली तत्बीक उन्होंने कैसे की, उस पर अमल पैरा कैसे हुए, कैसे अमल किया उन्होंने। अपने दिल से अगर कुछ भी निकालना शुरू कर देंगे तो ऐसे ऐसे नमूने सामने आएंगे कि कुछ भी दलील है, अल्लाह के की दलील क्या है, कुल हातु बुरहानकुम, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, इसकी दलील क्या है, कुल हुवल्लाहु अहद, कुछ भी आदमी साबित करना शुरू करेगा कोई भी आयत से, तो ये सही चीज नहीं है, वाकई उस बात से वो चीज निकलना चाहिए। इसलिए मैंने इब्तिदा में कहा कि अहल बिदात की दो बुराइयां हैं, या तो ऐसी दलील लाते हैं कि जो मोतबर होती है नहीं, फिर नाराज हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, हम जो भी दलील लाए तुम लोग उसको क्या करते, ज़ईफ बोल, अब दलील ज़ईफ लाओगे तो आप ज़ईफ नहीं बोलेंगे, तो आपका दिल रखने के लिए चलो इस मरतबा सही, यानी एक बच्चा है क्लास में कुछ लिख रहा है स्कूल में, गलत जवाब लिख के लाया पीर के दिन, टीचर ने बोला गलत है, फिर गलत जवाब लिख के लाया मंगल को, फिर बोले गलत है, जुम्मा के दिन बहुत रहम है टीचर को, बोले आज गलत भी बोलेगा तो उसको क्या बोलना है, कर सकते हैं एग्जाम, अब ज़ईफ लाओगे तो उसको ज़ईफ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, कभी बोलेंगे, तो जैसी बात लाएंगे उसके ऊपर वैसे ही फतवा लगेगा, वैसे ही हुक्म उस पर लगेगा, और सही कभी ले आते हैं तो फिर उससे दलील निकालना गलत तरीके से निकालना शुरू करते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम हमेशा अहले बिदात के होते हैं, या तो दलील मोतबर नहीं होती है या फिर मोतबर दलील से गलत मतलब निकालते हैं, तो ये दोनों प्रॉब्लम गुमराही के आम तौर से इंसानियत में रहे हैं। बहरहाल तो इससे भी साबित अब तक नहीं हुआ है। नंबर 9, फतेह मक्का के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर मक्का में दाखिल हुए और मक्का फतेह हो गया, तो ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए, अल्लाह रहम करे, कहां से निकल रहा है इसमें से? बोले देखो इतना बड़ा जुलूस था ना, वो तो जुलूस निकालने की दलील मिल रही इसमें, कितने लोग थे वो 10,000 का जुलूस था वो, क्या पता कि उन लोगों ने मक्का और तूने मकई, क्या फतेह कर रहा है तू, तूने क्या फतेह किया, और वो जुलूस जुलूस था वो नारे लगा रहे थे, वो नारे नहीं लगा रहे थे, वो तो वाकई मक्का फतेह हुआ और पूरा अमन तरीके से उन लोगों ने मक्का में वो दाखिल हुए, और इतना पावर हो चुका था मुसलमानों का कि लड़ने की जरूरत भी पेश आई नहीं पेश आई, तो उन्होंने तो मक्का फतेह किया, तू क्या फतेह करके आया, तेरा तो घर अब तक फतेह नहीं हुआ है, तू फतेह हो गया जब तेरी शादी हुई थी, है कि नहीं, हंस रहे हैं आप लोग, ऐसा लगता है आप लोगों को नहीं समझा, ये शादी हुई तो तू फतेह हो गया, कि शादी से पहले मां बाप कुछ भी बोले गुस्से में नहीं मानता मैं, और शादी के बाद सब हाँ जी 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 बिल्कुल सही, हाँ जी हाँ जी, तो शादी के बाद फतेह हो गया, तो ये क्या फतेह कर रहा है, घर में इसके दिन आया दुनिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में गए तो मक्का से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को हटा दिया, अल्लाह के घर को पाक कर दिया, अल्लाह के घर को पाक कर दिया, इसका घर अभी तक के खुराफात से पाक नहीं हुआ है, इसके घर में बिदात हैं, शिरकियात हैं, इसके घर में जहालत है, शैतान को आने जाने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, न सलाम है आते वक्त न बिस्मिल्लाह है खाते वक्त, क्या घर में शैतान परमानेंट मेंबर है घर का, लेकिन इसको मालूम नहीं है, क्योंकि जिस घर को बिस्मिल्लाह कह के बंद नहीं किया जाए दरवाजा, शैतान बोलता है रहने का जगह, रहने का इंतजाम हो गया, लॉजिंग का इंतजाम हो गया फ्री, और जब खाते वक्त में बिस्मिल्लाह नहीं बोलता है आदमी तो बोलता चलो रहने का भी इंतजाम हुआ और खाने का भी इंतजाम हो गया, तो सालों से ये पेइंग गेस्ट भी नहीं शैतान इसका, नॉन पेइंग गेस्ट, ये क्या फतेह करेगा, ये अपने आप को फतेह नहीं कर पाया अब तक, अपनी ख्वाहिशात पर इस्लाम का गलबा नहीं कर पाया, ये अपने घर वालों को दीन पर नहीं ला पाया, ये क्या फतेह कर रहा है, ये बाहर जाके नारे लगा के थोड़ा अपना गुस्सा कम निकाल के आ रहा है, बाहर चीख पुकार करके अपना स्ट्रेस कम करके आ रहा है, ये इस्लाम के बारे में बस बड़े नारे लगा के समझ रहा मैंने बहुत बड़ा काम किया, क्या ये इस्लाम है, इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, तो सहाबा ने बिला शुबा फतेह मक्का किया, लेकिन फतेह मक्का से ईद मिलादुन नबी के जुलूस की दलील लेना ऐसे ही है जैसे सहाबा ने जो जंगे की आदमी उसके बदले में जुलूस निकाले, बोले हमारी जंग ये है क्या, हम जुलूस निकालेंगे बस हमारी ये जंग है, तो ये बिल्कुल किसी भी तरह से अजान कितने बजे, 5 बजे अजान और जमा इसके मुताबिक बोल रहा हूं, ठीक है, तो बहरहाल मक्का फतेह हो गया और उससे یعنی یہ دلیل بعض لوگوں نے لی کہ اس سے ہم یہ دلیل لے سکتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے. کوئی زمین آسمان کا بھی یعنی اس میں اتنا بڑا فرق ہے, کوئی جوڑ نہیں اس میں, جس میں صحابہ 10,000 تھے. اور بعض لوگ اس سے دلیل لے رہے ہیں کہ آج ہم کو یہ جلوس نکالنا چاہیے, اس سے کوئی دلیل نکلتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد کے سالوں میں اس دن کو بھی صحابہ نے نہیں منایا. اگر واقعی دن منانے کا تھا, اگلے سال واپس صحابہ جلوس نکالتے, اگلے سال نکالے جلوس, مدینہ میں نکلا جلوس, ایسا فتح مکہ کا جلوس نہیں نکلا. وہ ایک ایونٹ تھا, وہ ایکچوئل ایونٹ تھا, وہ کوئی نقلی ایونٹ نہیں تھا, واقعی فتح ہوا. لیکن پھر یادگار کے طور پر پھر ہر سال جلوس نکلا اس کا, فتح مکہ کا نہیں. لیکن اس سے کچھ لوگوں نے دلیل لی کہ ہاں اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں, عید میلاد النبی کا جلوس نکال سکتے ہیں. یہ بہت ہی دور کی دلیل ہے, یہ دور کا رشتے دار ہے, وہ بھی سوتےلا ہے. تو اس سے کوئی یعنی ثابت چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. بچی ہوئی چیزیں ہم لوگ انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد دیکھیں گے.